আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جلیل القدر علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی 18ویں سالانہ فاتحہ آ گئی، یعنی آپ کو ظاہری طور پر ہم سے جدا ہوئے 18 سال گزر گئے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ روحانی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے سے دور مت سمجھنا، جب جہاں پکارو گے میری روحانیت تمہاری مدد کرے گی۔ اور الحمدللہ ان 18 سالوں میں ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ بہت سے معاملات، واقعات، حادثات ایسے پیش آئے جن سے نکلنا بظاہر بڑا مشکل تھا، لیکن جب ان کی بارگاہ میں عرض کی اور درخواست پیش کی، ان کی ایک نگاہ کرم ہوئی، سارا معاملہ حل ہو گیا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر انسان کر لے تو اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ایک ہے معمولات اور ایک ہے معاملات۔ یہ دونوں چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ معمولات کا تعلق اللہ کی ذات سے اور معاملات کا تعلق بندوں کی ذات سے۔ معمولات، انسان کیا کر رہا ہے، ڈیلی روٹین، آپ روزانہ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں بتائیے؟ سب سے پہلے، ارے فجر نہیں پڑھتے کیا؟ نہیں پڑھتے، جب بھی تو نہیں بول رہے، پڑھتے ہوتے تو سارے بولتے کہ اٹھتے ہی فجر پڑھتے ہیں، یہاں تو اٹھتے ہی 10 بجے ہیں تو فجر کیا خاک پڑھیں گے۔ خیر بہرحال، مسلمان کی ابتدا فجر سے، صبح کی ابتدا فجر سے، معمولات ہی اللہ کے ذکر سے۔ تو جس کی صبح اللہ کے ذکر سے، جس کے معمولات کی ابتدا اللہ کے ذکر سے، تو اس کا سارا دن کامیاب۔ ابتدا اچھی ہو گئی نا تو انتہا بھی اچھی ہو گئی۔ اب ان دو چیزوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ ان دونوں چیزوں میں کس طرح پورے اترے، ان کے اپنے معمولات کیا تھے، ڈیلی روٹین کیا تھا۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اور ان کے معمولات کا جائزہ لیں کہ وہ کس طرح اپنے معمولات پورے کرتے تھے، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ معاملات، لوگوں کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ کیسی تھی، تعلقات کیسے تھے، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ معمولات کیا تھے، رات میں 100 نفل روزانہ پڑھتے تھے، اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد ذکر اذکار کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، ذکر بالجہر، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ فجر کی نماز ادا کرتے، مختصر ناشتہ کرتے، پھر دو گھنٹے آرام کرتے، اس کے بعد اٹھ کر 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھتے، اس کے بعد 11 بجے سے 2 بجے تک مریضوں میں روحانی علاج، 2 بجے کے بعد ظہر ادا کرنے کے بعد کھانا تناول فرماتے، پھر آرام کرتے، عصر کے بعد 22 مرتبہ دعائے حزب البحر پڑھتے، اور عشاء کے بعد رات 10 بجے سے 12 بجے تک پھر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تیار، گویا ان کی راتیں خدا کے لیے اور دن مخلوق خدا کے لیے، یہ ان کی معاملات۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں، معاملات تو ان کے یہ تھے، لیکن معاملات کیا تھے؟ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا؟ رب کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف، سرکار نے فرمایا خطبہ حجت الوداع میں، آج میں نے تمام جاہلیت کے رسوم، تمام چیزوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا، لا عربی ولا عجمی، لا عجمی ولا عربی، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، الا تقوی، سوائے تقوی، جو متقی ہے، پرہیزگار ہیں، وہی سب سے افضل ہے، وہی سب سے برتر ہے۔ جاہلیت کی تمام رسوم، کوئی نسب پہ فخر کر رہا ہے، کوئی خاندان پہ فخر کر رہا ہے، کوئی قبیلے پہ فخر کر رہا ہے، کوئی مال و دولت پہ فخر کر رہا ہے، کوئی عہدے اور منصب پہ فخر کر رہا ہے، آقا نے فرمایا یہ سب میں نے اپنے قدموں تلے رون دیے، اب اگر فخر کی بات ہے، اب اگر کوئی برتری کی بات ہے، تو صرف اور صرف تقویٰ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف تقویٰ۔ اور یہ چیز اگر ہم حضرت کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بدر کے اتم یہ چیز نظر آتی ہے۔ تقوی کے معنی ڈرنا، تقوی کے معنی بچنا، جہاں پر گناہ کا شائبہ بھی ہو اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لینا۔ مقبرہ شریف کی تعمیر ہوئی، ٹھیکیدار نے جو مال بچا، یعنی بجری اور سیمنٹ ملا ہوا جو مال بچتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ جو بجری کا ٹرک پڑا ہوتا تھا، بجری پڑی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ ڈال کے چلا جاتا، اوپر سے بجری ڈال دی، پتہ نہ چلے کہ کیا ہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت نے دیکھا تو اس کے اندر سے سیمنٹ کے گولے نکلے، ظاہر ہے وہ مال خشک ہو گیا نا، تو پتھر بن گیا۔ آپ نے اس کو بلایا، پوچھا، اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے اس میں ملا دیا۔ فرمایا دیکھو یہ مال ضائع ہوتا ہے، ایسا کرو کہ جو مال بچ جائے اسے ہمارے گھر کے دروازے کے آگے ڈال دینا، کچا ہے، بارش میں پانی کھڑا ہوتا ہے تو ایک چبوترا سا بن جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے ایک دن ڈال دیا، دوسرے دن مال بچا پھر ڈال دیا، تیسرے دن بچا پھر ڈال دیا، ہوتے ہوتے ٹکڑوں میں ایک چبوترا بن گیا۔ مقبرہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی، اب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس زمانے میں جب یہ چھوٹی مسجد تھی، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ تعمیر نہیں، اور اتفاق سے وہی ٹھیکیدار تھا۔ اب حضرت کا تقویٰ ملاحظہ کیجئے، پرہیزگاری اور احتیاط۔ اس نے کیا کیا؟ پھر مال بچا، اس نے کہا، حضرت نے کہا تھا کہ یہ گھر کے آگے ڈال دینا، اس نے دوبارہ لا کے ڈال دیا، وہی چبوترا بنانے کے لیے، جیسے پہلے بچا تھا، روزانہ بچتا رہا، ڈالتے رہا ٹکڑوں ٹکڑوں میں، ایک چبوترا بن گیا۔ حضرت باہر تشریف لائے، جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ کو غصہ آیا کہ ایسا کیوں ہوا، اس کو بلایا، اس نے کہا حضور آپ نے تو یہی کہا تھا۔ فرمایا وہ مقبرے کی تعمیر تھی، یہ مسجد کی تعمیر ہے، مسجد کا مال میرے گھر کے آگے، میں کیا جواب دوں گا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، باوجود یہ کہ اپنے پاس سے پیسے خرچ کر رہے تھے، خود اپنی جیب سے دے رہے تھے۔ پھر پوچھا بتاؤ، اس نے کہا جی میں نے ایک ٹرالی ڈالی، ٹرالی جو ہوتی ہے نا، میں نے صرف وہ ڈالی۔ کہا اس میں کتنی بجری ہے، اس میں کتنی سیمنٹ کی بوریاں ہیں، اس کا اندازہ کیا، اور اس سے زیادہ پیسے اپنی جیب سے مسجد کے اندر ڈالا۔ یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ آج تو لوگ مسجد کا مال کھا جائیں اور ڈکار بھی نہ۔ ایک صاحب کو تو میں نے یہ سنا، دیکھا نہیں لیکن سنا، کہ ہر جمعے کو آئے، ہاں بھائی کتنا چندہ ہوا، اتنا گلے میں سے نکالا اپنی جیب میں رکھا چلے، پتہ ہی احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسجد کی چیزیں بچی اپنے گھر میں استعمال ہو رہی ہیں، مسجد کا مال کھا رہے ہیں، مسجد کا پیسہ کھا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِید، جب تمہارے رب کی پکڑ آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہو، جس کو وہ پکڑ لے اسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا، اور جسے وہ چھوڑ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اتنی حضرت کے اندر خشیت الہی تھی، اتنی سی بات پر آپ غور کریں۔ دراصل دوسری بات، ہم ایک دوسرے کی امانت کتنے آرام سے کھا جاتے ہیں، ذاتی مال سمجھتے ہیں نا، کسی کی امانت رکھوائی، وہ آیا بعد میں لینے کے لیے، اگر پیسے رکھوائے تو وہ تو کھانا ہی کھانا ہے، وہ تو دوست کا مال ہے نا، وہ تو کھانا ہی۔ مجھے کیا پتا بھائی تم نے کب رکھوائے، مجھے کیا پتا کتنے پیسے تھے، اگر دیے بھی تو تھوڑے تھوڑے کر کے دیے، اور اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی۔ اب آئیے حضرت کا عمل دیکھیں، حضرت کے مرید اور خلیفہ حاجی غلام مشتبہ شاہ اشرفی، ان کے نواسے یہاں موجود ہیں، فاروق صاحب ملتان سے آئے ہیں، وہ حضرت کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے۔ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پیر و مرشد کے ساتھ انہوں نے حج کیا، حج کے دوران ان کی خدمت۔ دوسرا سال ہوا، کیونکہ حضرت ہر سال جاتے تھے، 17 سال مسلسل آپ گئے پابندی کے، 17 سال، اور بیچ میں کوئی گیپ نہیں۔ اور جب لوگ راستے درمیان میں قانون تبدیل ہوتے رہے کہ جو ایک سال جائے گا وہ دوسرے سال نہیں جائے گا، 2 سال کے بعد جائیں گے، مختلف پابندیاں لگتی رہیں، لیکن حضرت جب ٹائم آتا تھا چلے جاتے، تو لوگ پوچھتے آپ کیسے چلے جاتے ہیں، یہ تو پابندی لگی تھی کہ جو اس سال گیا وہ اگلے سال نہیں جائے گا، 2 سال کے بعد اس کا NOC ملے گی، آپ کیسے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب میں حج کر کے مدینہ طیبہ حاضری دیتا ہوں، اگلے سال کی درخواست پہلے ہی لگا دیتا ہوں۔ اگلے سال کی درخواست پہلے ہی لگا دیتا ہوں، جب وہاں سے منظوری ہو گئی تو یہ کیسے روکیں گے، یہ کیسے روکیں گے، حقیقت یہاں گئی۔ تو حاجی غلام مصطفی شاہ نے یہ کہا کہ حضرت اگلے سال آپ جا رہے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں چلے جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ انہوں نے حج کے پیسے ایک لفافے میں رکھ کر حضرت کو دیے کہ میں تو ملتان جا رہا ہوں، یہاں پہ جو بھی خرچہ ہوگا، جو بھی آپ یہ رکھ لے، ٹکٹ کے پیسے ہیں اور جو بھی ہیں، جو کمی ہوگی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے آپ اس پر اپنا نام لکھ دیں، اور یہ بھی لکھ دیں کہ یہ پیسے حج کے لیے ہیں۔ انہوں نے لکھ دیا، حضرت نے لے کے وہ لفافہ رکھ لیا۔ جب حج کا زمانہ قریب آیا تو ان کا خط آیا کہ اس سال میں نہیں جا سکتا، کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں، کچھ معاملات ہیں، تو میں اگلے سال آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، پھر آپ نے ان کے لیے نہیں کیا، وہ لفافہ رکھا۔ دوسرا سال بھی اسی طرح گزر گیا۔ تیسرا سال جب آیا اور وہ عرس شریف میں شرکت کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ پیسے جو میرے حج کے تھے وہ تو میں جا نہیں سکا، تو وہ آپ مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ آپ نے وہ لفافہ الماری سے نکالا، دے دیا، اور جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے، پیسے بھی اتنے ہی تھے، لفافہ بھی بالکل وہی تھا۔ ضرورت پڑتی ہے نا کبھی، ہم کہتے ہیں چلو استعمال کر لیں بعد میں ہم ڈال دیں گے، استعمال بھی نہیں کیا کہ نہیں یہ امانت ہے، اس کو استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے، اس لفافے میں سے نکالنا یہ بھی غلط ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ حضرت، اچھا انہوں نے یہ کہاں بھی تھا، اگر آپ کو ضرورت پڑے آپ استعمال کر لیجیے گا، آپ میرے پیر ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ میری طرف سے ایک نذرانہ ہو جائے گا۔ وہی رقم بین ہی اسی طرح انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا لفافہ آپ نے ان کے حوالے کیا، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرمایا امانت کی حفاظت اسی طرح ہوتی، امانت کی حفاظت اسی طرح ہوتی ہے، نہ پیسہ تبدیل ہوا نہ لفافہ تبدیل ہوا، اور اسی طرح 3 سال کے بعد وہ لفافہ آپ نے ان کے حوالے کر دیا۔ और हमारा क्या हाल है? किसी से पैसे लिए, हाँ ठीक है दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, एक महीने बाद दे देंगे, एक साल दे देंगे, कोई जबान का पास नहीं। अब कोशिश करते ये भूल ही जाए तो अच्छा है, खुद ही खा जाएंगे। अपने पीर का अमल देखो, 3 साल के बाद वो रकम एक पैसा इस्तेमाल नहीं किया और मुरीद क्या कर रहे हैं, पैसा लेकर खा रहे हैं, भूल रहे हैं आराम से। भूल क्या रहे हैं, याद है लेकिन खाने तक। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई अमानत ले, खुसूसन पैसा अगर देना चाहे, नियत रखे, तो यकीनन वो दे सकता है। अल्लाह की मदद क्या मिले हाल होती है। यहां तो कहते नहीं थी, ये तो जाती माल। उनको नहीं पता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, अय्युल मुफलिस, मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी। मुफलिस वो है, मन ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास ना मालो दौलत हो ना दिरहम हो। आका ने फरमाया, नहीं मुफलिस वो नहीं है, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत में इस हाल में लाया जाएगा कि उसके नामाए अमाल में नमाजें भी होंगी, रोजा भी, हज भी, जकात भी, सदकात भी, खैरात भी, तमाम नेक अमाल उसके नामाए अमाल में होंगे। मगर उसके साथ साथ वमन खतम हादा, वमन जरब हादा, वमन अकल माल हादा, वमन कतल हादा, ये सारी चीजें उसके साथ होंगी। किसी का मान खाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी के साथ अमानत में खयानत की होगी, किसी को कत्ल किया होगा, ये सारी चीजें उसके नामे अमाल में होंगी। ये चीजें उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी जिनके साथ उसने ऐसा किया होगा, उसके नामे अमाल उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी जिनके साथ उसने ये किया होगा। किसी को गाली दी, किसी का माल गसब किया, किसी का माल खाया, किसी के साथ अमानत में खयानत की, इसकी नेकियां उनमें तकसीम कर दी जाएंगी। फिर क्या होगा? खाली हाथ खड़ा होगा। फरमाया, ये है मेरी उम्मत का मुफलिस। सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं, कितनी बड़ी मुफलिसी। सब कुछ होने के बाद, यानी आप पहुंच रहे हैं ये सोच करके, मैंने इतने हज किए हैं, मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, मैंने इतने रोजे रखे, लेकिन उसके साथ साथ अमानत में खयानत भी की, किसी को गाली भी दी, किसी की दिल आजारी भी की, और सारी चीजें की, आपके नेक अमल उन सब में तकसीम कर दिए खाली हाथ। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मुफलिसी से बचाए, ऐसी मुफलिसी से बचाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, की दुनिया दारुल अमल है, यहीं से सोच लीजिए और अहद कर लीजिए, अगर आप पर किसी का एक पैसा भी है, अभी से नियत कर लीजिए आपको अदा करना। और जब नियत करोगे तो अल्लाह ताला उसमें उसकी मदद शामिल हाल होगी और आप वो अदा कर सकते हैं। यहां तो लेते ही इसलिए कि अदा कर रहे हैं, लेते ही इसलिए कि अदा करना ही नहीं। कितने लोग और बहुत करीबी लोग, इसलिए हमने कहा भाई लिख लो, तहरीर कर लो, कहा नहीं जी ये तो जिगरी दोस्त है, वो तो फला दोस्त है, वो तो लंगोटी यार है, वो तो फला है। और जब पैसा खा लिया तो फिर पता चल गया कैसा जिगरी दोस्त, कहा हमने तो इतमाद किया था। इसीलिए कुरान ने भी कहा, हदीस में भी आया, मुआहिदा करो, लिख कर पता चल जाए कितना पैसा किसका है, कितना देना है, पार्टनरशिप हो लिख कर, बाकी चीजें सारी। तो कहने का मकसद यह है कि हजरत की इतनी एहतियात थी। दो चीजों में आपने देखी, तीसरी चीज, हम लोग वुजू करते हैं, कितनी एहतियाती करते हैं, पानी बहाते हैं। पहले जमाने में लोटे होते थे ना, लोटे से वुजू करते थे, तो उसमें जरा सा ये डर होता था कि भाई ये लोटे का पानी खत्म ना हो जाए, इसी में पूरा करना है। अब तो नल खोल दिया, बैठ गए आराम से, पानी वाफर मकदार में आ रहा है, खूब बातें कर रहे हैं, पानी बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दीगर चीजें। हजरत तशरीफ ले गए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की सर्दी पंजाब की, वहां पर एक मुरीद के यहां कयाम हुआ, तो आपने फरमाया कि भाई इतनी सर्दी में आपने गीजर नहीं लगाया। कहा नहीं हुजूर, गीजर तो लगा है। कहा मैं जब वुजू करने के लिए जाता हूं तो पानी ठंडा होता है। उन्होंने कहा नहीं, गीजर लगा है लेकिन दूर है, और आप जानते हैं गीजर जब दूर हो तो गर्म पानी आते आते देर लगती है, ठीक है ना, अगर कमरे के बाहर हो तो फौरन आ जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करें कि आप जाते ही टोटी खोल दें, आराम से 15 मिनट 20 मिनट पहले आप खोल दें और 15 मिनट के बाद आप जाएंगे तो पानी आ जाए। फरमाया 15 मिनट तक जो पानी बहेगा उसका हिसाब कौन दे? 15 मिनट तक जो पानी जाया होगा उसका हिसाब कौन देगा? कोई करता ही इतनी एहतियात? कभी ख्याल किया हमने इस चीज का? गर्म पानी आने के लिए उसको खोल दिया और उसके बाद पानी जाया हो रहा है? एक एक चीज में एहतियात थी, ये था उनका तकवा, ये परहेजगारी। फरमाया जब तक तुम्हारा गर्म पानी आता है मेरे ठंडे पानी से वजू मुकम्मल हो जाता, वही ठंडे पानी से करते रहे। और फरमाया दूसरी बात यह है कि यहां तो गीजर है, मुझे तो और जगह भी जाना है, कहीं गांव में कहीं और जगह, बहुत सी जगह मुझे जाना है, तो इसलिए कहीं पर गर्म पानी ना मिले तो मैं एक ही चीज रखता हूं, ठंडे पानी से ही वजू कर लेता, तो ना भी मिले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जरा सा गौर करें कि कितनी एहतियात थी इस चीज में। और हमारी कैफियत क्या है कि हम पानी पे इंतहा बहाते हैं, जरा सी चीज में हम एहतियात नहीं करते, लेकिन हजरत के हर अमल में एहतियात, पानी में, पीने में, खाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में। कभी आप आराम फरमा रहे हैं, वालिद मोहतरमा ने फरमाया कि वालिद साहब थके हैं, उठाना नहीं, अभी सोने दो। अच्छा है, दो तीन घंटे और सो जाए। कुछ देर के बाद जब हम गए कमरे में, देखा मसल्ले पर बैठे, वजू करके आकर मसल्ले पर बैठ गए। कहा तुमने नहीं उठाया ना, मेरे मवक्कलात ने मुझे उठा दिया। जब टाइम हो गया, कहा टाइम हो गया लिहाजा मुझे मसल्ले पर पहुंचना। उनको खाना मिले ना मिले उनके मामूलात पूरे हों, सुबह नाश्ता मिले ना मिले सूरह मुजम्मिल पूरी। 1998 में लाहौर में आपकी नाक से खून जारी हो गया, खून। अक्सर ऐसा होता है ना, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसमें दो चीजें होती हैं, या तो वो ऊपर की तरफ चला जाए या फिर नाक से खारिज हो जाए। तो जो ऊपर की तरफ जाता है वो ज्यादा खतरनाक है, उसमें फिर ब्रेन हैमरेज हो जाता है, रग फट जाता है। और अगर नीचे की तरफ आए तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि खून नाक से निकल गया, तो बंदा जो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो सकता है, ऊपर जाना ज्यादा खतरनाक। तो हजरत हाजी निसार अहमद पराचा अशरफी के यहाँ रावी रोड पर कयाम फरमा थे, खून जारी हो गया, डॉक्टर के यहाँ ले गए, उसने पट्टियां अंदर रखी, बिल्कुल बैंडेज कर दी, नाक बंद कर दी, सिर्फ मुंह से सांस ले रहे हैं। फिर किसी ने कैसे करें, इत्तेफाक हॉस्पिटल ले जाए नवाज शरीफ का, जो वहां पे एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा काबिल है, समझदार है, उसको दिखाएं। उसको दिखाया, उसने देखा, उसने भी यही बात कही कि ये तो अल्लाह का करम हुआ कि नाक से जारी हो गया, अगर ये ऊपर की तरफ इसका दबाव होता तो ब्रेन हैमरेज हो जाता, रग फट जाता। खैर, हजरत का मामूल जिस तरह के मैंने बताया कि फजर के बाद सूरह मुजम्मिल 100 मर्तबा पढ़ते थे, उसने ये कहा कि इनको नींद की गोली दे दो ताकि ये सोते रहें, जितने ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा है, इसलिए कि जब जागेंगे तो जाहिर करवटे लेंगे या उठकर बैठने की कोशिश करेंगे, और बैठेंगे तो फिर खून दोबारा नीचे की तरफ आएगा, तो ये बस गर्दन ऐसे करके लेटे रहें। गोली दे दी, सुबह फजर पढ़ के आप आराम फरमा हुए, लेटे ही भी थे। अब उनके सूरह मुजम्मिल शरीफ का टाइम हो गया, सूरह मुजम्मिल 100 मरतबा जो पढ़ते थे, जब टाइम हुआ उधर नींद की गोली और हजरत की जबान पर जारी हुआ, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीलन अव ज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरआन तरतीला। उसके बाद फिर आंखें बंद, एक एक आयत पढ़ते हैं फिर आंखें बंद हो जाती, फिर आयत पढ़ते हैं फिर आंखें बंद हो जाती। तो उन्होंने मुझसे कहा, मुरीदीन ने, कि ये क्या बात है, हजरत को गोली दे रहे हैं, नींद आ भी रही है और ये सूरह मुजम्मिल भी पढ़ रहे हैं, फिर नींद आ रही है, ये कशमकश है, क्या मसला है? मैंने कहा मसला ये है कि रूह अपनी गिजा मांग रही है, ये सूरह मुजम्मिल उनकी रूहानी गिजा है। 1948 में दादा हुजूर किबला ने उनको सूरह मुजम्मिल शरीफ की इजाजत दी कि बेटा 100 मरतबा तुम पढ़ो, तो 1948 से लेकर 2005 तक एक दिन भी ना गने, गौर फरमाएं, हमें बुखार हो तो हम नमाजें छोड़ दें, उनके वजाइफ भी नहीं छूटते थे। खैर ये बात तो 1998 की है, तो मैंने कहा उस वक्त से आज तक ये पढ़ रहे हैं और एक दिन भी नागा नहीं हुआ, बुखार हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, कैसी ही कैफियत हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सफर हो या हजर हो, उनकी सूरह मुज़म्मिल सुबह पूरी होनी चाहिए। कहने फिर क्या करें? मैंने कहा मसला यह है कि गोली अपना काम कर रही है, नींद ला रही है और रूह अपनी गिज़ा मांग रही है, इसीलिए जबान पर सूरह मुज़म्मिल जारी हो रही। उन्होंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा आप करो ये कि जब वो गोली लेकर आए, क्योंकि उसको पता था कि इतनी देर में गोली का असर खत्म हो जाता, वो फिर पानी का गिलास और गोली लेकर आ जाता, वो जो वार्ड बॉय था जो भी लड़का था, और अपने सामने खिला के चला जाता। तो मैंने कहा उससे कहना हम खिला देंगे। उससे गोली ले ली, वो चला गया, हमने गोली डस्टबिन में डाल दी। जब गोली का असर खत्म हुआ, हजरत उठकर बैठे और फरमाया वुजू कराओ, तुम लोगों ने उठाया नहीं, सूरह मुज़म्मिल का टाइम निकल रहा। हमने वही तसला रखा उसी बेड पर और लोटे से पानी डालकर वही वुजू कराया। आपने वुजू किया, उसके बाद तकिया कमर से लगाकर आप जैसे आधे लेटे आधे बैठे होते इस तरह आप बैठ गए और सूरह मुज़म्मिल शुरू कर दी। 2 घंटे में 100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ वो पढ़ते थे, 2 घंटे में 100 मरतबा। इधर सूरह मुज़म्मिल पूरी हुई, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसके बाद इत्मीनान के साथ बगैर गोली के सो गए, न गोली देने की जरूरत पड़ी नींद की गोली। मैंने कहा अब देख लो, रूह को गिजा मिल गई, गोली देने की जरूरत नहीं पड़ी, नींद आ गई। तो ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ये वज़ाइफ पढ़ते हैं, ये उनकी गिजा है। खाना मिले ना मिले उनके मामूलात पूरे हों, नाश्ता मिले ना मिले उनकी सूरह मुज़म्मिल पूरी, ये उनकी कैफियत थी, उनकी गिजा बन गई थी। और हदीस शरीफ में आया जो जिस सूरत को पढ़ता है वही सूरत कयामत में उसके लिए शफात करेगी, कयामत में उसकी शफात करेगी। इसी तरह जिक्र हदीस में भी उसके सिलसिले में आया। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजारी, तकवे में, परहेजगारी में, एहतियात में, हर चीज में एहतियात, खाने पीने में। दूसरे एक बात बड़ी प्यारी फरमाते थे, फरमाते थे ड्यूज ना अल्लाह के रखो ना बंदों के रखो, ड्यूज जो देना है ना अल्लाह के ना बंदों के। अल्लाह के क्या है, क्या है अल्लाह के ड्यूज? अरे जकात नहीं दी क्या कभी? ये लोग तो जकात भी नहीं देते, ऐसे लगता है। जकात फर्ज है, दीकर काम हम कर लेंगे और जकात का वक्त है नहीं। जी नहीं, ये तो मसला है, ये क्या मसला है भाई? जकात आप पर फर्ज है, आप पहले जकात निकालिए। अगर उस माल पर 1 साल गुजर चुका है और हाजत असलिया से जायद है तो जकात फर्ज है। कहते नहीं जी अब जकात नहीं दे, जब चोरी हो जाता है सोना, जब माल चोरी हो जाता है फिर कहते जी चोरी हो गया, तो तुमने अल्लाह का जो उसने मांगा था तुमने दिया। ये जकात माल का मैल है, ये मैल निकल जाता है तुम्हारा माल पाक हो जाता है। तो फरमाया ड्यूज ना अल्लाह के रखो ना बंदों के, यानी बंदों को अगर देना है तो दे दो, देना है तो दे दो, और रब ने जो मांगा जो तुम पर फर्ज किया। और एक और जुमला फरमाया, देखो अल्लाह के बंदों की जुमलों में कितना असर। फरमाया अगर जकात और मीरास सही तौर पर तकसीम हो जाए दुनिया के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाए। हकीकत है ना, जकात सही तौर पर तकसीम हो जाए जितने गरीब हैं सारे अमीर हो जाएं, और मीरास सही तकसीम हो जाए हकदार को हक मिल जाए मसले हल हो जाए। नहीं, जायदाद पर सांप ने बैठे नहीं, हम खा जाएं, हम नहीं देंगे, हम बहनों को नहीं देंगे, हम फला को नहीं देंगे, हम फला को नहीं देंगे, और जब कब्र में गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई चीज हाथ ना आई, सब खत्म हो गया। तो इसलिए यहीं पर ही दे दो, ये तमाम चीजें अपने जहन में रखे। दूसरी बात, हजरत की एक आदत थी माफ फरमा दिया करते, अफू और दरगुजर। इसी जगह दरगाह शरीफ में एक बदबख्त ने पत्थर आपके चेहरे मुबारक पर मारा और इतना शदीद हमला था कि 2 दांत आगे के शहीद हो गए, नाक की हड्डी टूट गई, सर पर लगा, सर जख्मी हो गया, इतना बड़ा पत्थर था, और आप यहीं इसी जगह आप बेहोश होकर गिरे। एक महीने तक अस्पताल में रहे, नाक में पट्टियां उन्होंने लगाई, नाक से खून जारी था, रुक नहीं रहा, इतनी तकलीफ उठाई, इतनी अजियत उठाई, और जब वो बदबख्त आया तो उसे माफ कर दिया। हम किसी को माफ करेंगे? हमने कहा इसने पत्थर मारे हैं तो मैं तो गोली मारूं इसको। असल में मसला क्या है, सैयदों का शेवा ही माफ करना, माफ कर दे। महमूद गजनवी ने अपना दरबार लगाया तो उसने ये कहा कि कोई ऐसा आदमी है जो मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मिलवा दे, इस दरबार में कोई ऐसा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। एक खड़ा हो गया, हुजूर मैं जहां पना मैं कर सकता। अच्छा तुम कर सकते हो? हाँ। क्या करोगे? कहा इसके लिए मुझे एक चिल्ला करना पड़ेगा। अच्छा चिल्ला करना पड़ेगा? हाँ। और वो चिल्ला एक साल का होगा, एक साल मैं चिल्ला करूंगा तो आपकी मुलाकात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से हो जाएगी। महमूद गजनवी बड़ा खुश हुआ, अच्छा लेकिन हजरत जब मैं एक साल चिल्ला करूंगा तो जाहिर है मैं काम नहीं करूंगा, और जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर के मामलात कैसे चलेंगे, मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अगर आप एक साल तक मेरे घर का खर्चा उठा लें तो मैं वो चिल्ला आपके लिए कर लूं। चलाक आदमी था, बादशाह ने कहा बादशाह के लिए क्या मसला है? बादशाह ने कहा ठीक है चलो एक साल तक चिल्ला करो, और कहा भाई इसके घर के सारे अखराजात ये शाही खजाने से, पूरा राशन पहुंचा देना हर महीने। एक साल गुजर गया, बड़े मजे से खाया शाही खजाने से आ रहे साल। जब एक साल गुजर गया बादशाह ने बुलाया, आ गए दरबार में, भाई क्या हुआ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से तो मुलाकात हुई नहीं। कहा एक साल और लगेगा। अरे तुम तो कह रहे थे एक साल का, नहीं कुछ कसर रह गई है चिल्ले में, एक चिल्ला और करना पड़ेगा वो भी एक साल का है। बादशाह ने देखा अच्छा चलो ठीक है एक साल और। अब दो साल हो गए, शाही खजाने से राशन जा रहा है, घर में आराम से, ना कमाने की जरूरत ना कुछ, खाने खाना पीना ढूंढने हर चीज पहुंच रही। फिर बुलाया बादशाह ने, हाँ भाई क्या हुआ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से तो मुलाकात हुई नहीं। इसने कहा हुजूर जहां पना मैं सच बात बताता हूं, मैंने आपसे झूठ बोला। अरे झूठ बोला? हाँ मैंने झूठ बोला, घर में फाके हो रहे थे, तंगदस्ती थी, काम था नहीं, और मैं काम कर नहीं सकता था, बहुत परेशान था। मैंने इसी बहाने से मैंने कहा कुछ दिन चल जाए, एक साल चल गया तो फिर मैंने एक साल और लगाया तो दो साल हो गए। अब मैं बिल्कुल सही बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ये जो आपसे कहा था ना ये झूठ था, मैंने ये सच बता दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बादशाह ने वजीर से कहा बताओ इसकी क्या सजा होनी चाहिए। वजीर ने कहा इसको पागल कुत्तों के सामने डाल दो हाथ पैर बांध के, वो इसको बोटियां नोच नोच कर खा जाए। अच्छा दूसरे वजीर से पूछा तुम बताओ। उसने कहा हुजूर ये इसका जो है ना कीमा बनाते हैं। क्या मतलब? इसको मारें, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करें, बोटियां बोटियां बनाए, सब उछाल दें। अच्छा एक ने कहा कुत्तों के सामने डालो, दूसरे ने क्या कहा कीमा बना दो, बोटियां बना के डाल दो, फेंक दो। अयाज जो था, अयाज, अयाज आप जानते हैं ना, महमूद और अयाज मशहूर है, जो उसका महमूद गजनबी का बड़ा लाडला खादिम था, वो उसको बिल्कुल अपने पास रखता था। तो बादशाह ने मुड़कर देखा अयाज तुम बताओ। अयाज ने कहा हुजूर दो साल इसने आपका माल खाया। कहाँ खाया? तो आपके खजाने में कोई फर्क पड़ा? कहा नहीं। आपकी इज्जत में, जाहो जलाल में कोई फर्क पड़ा? कहा नहीं। कहा भाई यही रहा ना कि इसके घर का खर्चा चलता रहा। हाँ कह इसे माफ कर दे, इसे माफ कर दे। बादशाह ने कहा ये क्या बात, एक कह रहा है कि इसको बांध के कुत्तों के सामने डाल दो, दूसरा कह रहा है कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, और ये कह रहा है माफ कर दो। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, नूरानी चेहरा, बादशाह के दरबार में थे वो, चेहरे से नूर चमक रहा, सफेद दाढ़ी जुब्बा पहने, अमामा पहने हुए। बादशाह ने कहा आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा आप ये बताइए कि ये तीनों की राय में फर्क क्यों हुआ? अब ये सुनने वाली बात है, जो लोग सो रहे हैं ना गर्दन इधर उधर, उनको भी चाहिए जरा गौर से सुने। इन सब की राय में फर्क क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है ना आपका वजीर, जिसने कहा इसको कुत्तों के सामने डाल दो, इसके बाप दादा अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, वही काम इसने किया। जो ऊपर से चला आ रहा है वो तो ब्लड में शामिल होती है ना वो चीज, इनके बाप दादा शुरू ही से कुत्ते नहलाते थे, तो इसको वही था, इसने कहा कुत्तों का गड्ढा का। दूसरा वजीर जो कहता है इसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दो, गोटियां कर दो, कहा इसके बाप दादा कसाई थे, इसके बाप दादा कसाई थे इसलिए इसने कहा। कार आयाज कहां ये आले रसूल है, इनका काम ही माफ करना, ये आले रसूल है, सैयद ज्यादा है इसीलिए इसने कहा माफ कर दो। बादशाह ने कहा तुमसे क्या चाहते हो, तो आज मुझे पता चला। उसने कहा अगर इन्होंने मेरा राजपाट किया है मैं भी इनका राजपाट करूंगा, यही तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, यही हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। बादशाह की तमन्ना पूरी हो गई, मुलाकात हो, तो हजरत की तबीयत में अफू और दरगुजर था, हम खता करते रहे वो अता करते रहे, हम गलतियां करते रहे वो माफ करते रहे, मुरीदों को माफ कर दिया, औलाद को माफ कर दिया, जिसने कातिलाना हमला किया उसे माफ कर दिया, जिसने पान में जहर दिया उसे माफ कर दिया, जिसने तकलीफें दी उसे माफ कर दिया, जितने वैसे परेशान किया उसे माफ कर दिया, सबको माफ करते रहे। और हमने कई दफा कहा आपने क्यों माफ कर दिया, फरमाया नंबर बढ़ते हैं, नंबर बढ़ते हैं। उनकी नजर इधर नहीं थी, उनकी नजर उधर थी, उनके दर्जे बढ़ रहे थे, उनके मर्तबे बढ़ रहे थे, उनके मकामात बढ़ रहे थे, वो जानते थे ये दुनिया आर्थिक है, फानी है, खत्म होने वाली है, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा तो वहां पर तो रहमत ही रहमत है, करम ही करम है, वहां का जो दर्जा होगा वो यहां के मुताबिक हो ही नहीं सकता। तो ये हजरत अशरफुल मशाइख की शान थी, ये उनका मकाम था, ये उनका मर्तबा था। उनकी हयात मुबारक एक बहर दखार है, उसके सिर्फ चंद कतरे मैंने आपके सामने पेश किए। आज उनके विसाले मुबारक को 18 साल गुजर चुके, लेकिन जो पौधा उन्होंने लगाया ये दरगाह आलिया अशरफिया, उस वक्त ये बिल्कुल जंगल था, एक वली जमीन के नीचे था, एक वली जमीन के ऊपर था, जो वली जमीन के ऊपर था वो नीचे वाले वली से फैज ले रहा था, ऊपर वालों को पहुंचा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों वहीं पर हैं, अब फैज डबल हो गया, अब फैज डबल हो गया। पहले हम जाते हुए डरते थे इसलिए कि दादा हुजूर में जलाल है, कहीं ऐसा नहीं कोई मसला हो जाए, जलाल है, लेकिन अब उनके साथ जमाल भी है, उनके साथ जमाल भी है, इसलिए अब डर नहीं लगा। अगर कोई गलती होगी तो साथ ही है ना, तो सिफारिश कर देंगे, बच्चे हैं गलती हो गई माफ कर दें, वो माफ कर देंगे। तो उनका फैज आज भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दरगाह आलिया अशरफिया। इसके बाद समनानी फाउंडेशन स्कूल की बुनियाद उन्होंने रखी, जिसमें इंग्लिश तालीम और उसके साथ साथ हिफ्ज़े कुरान नादरा की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी, मैट्रिक तक ये स्कूल है हमारा, और बाकायदा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा। जामे ताहिर अशरफ की बुनियाद उन्होंने रखी, बाद में वो इमारत ली गई अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दरसे निज़ामी का आगाज वहाँ हो चुका, तीसरा दर्जा वहाँ शुरू हो चुका और दाखले वहां पर जारी है। इसके अलावा हिफ्ज़े कुरान की कसीर तादाद वहां तलबा की है, और उसमें एक खसूसियत यह भी है कि हिफ्ज़े कुरान के साथ अंग्रेजी तालीम भी है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये भी हासिल करें, तो दोपहर के वक्त अंग्रेजी तालीम भी उसमें रखी गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज्यादा दाखले हो रहे हैं, और करीब हमें दूसरी इमारत जो है वो लेनी पड़ेगी। ये तमाम चीजें हैं। तीसरी चीज समनानी वेलफेयर, ये एक इदारा हमने कायम किया, हजरत के ज़माने में भी ये सिलसिला चल रहा था और बुजुर्गों का सिलसिला ये चलता ही है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ देखने के लंगर पकता था, तो उनके लंगर के छिलके, प्यास के छिलके इतने होते थे जो कई ऊँटों पर लाद कर फेंके जाते, सुबह शाम गरीब मिस्कीन यतीम असीर सब आकर खाते थे, और जब सब खा लेते तो हजरत फरमाते निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही लाओ हमारा खाना भी लाओ, जब उनका खाना आता तो जौ की बगैर छने आटे की रोटी होती, चंद लुक में खाता था। तो बुजुर्गों के ये सिलसिला चल रहा है, गरीबों की मदद करना, ये सारा हमने थोड़े से जमाने के हिसाब के, क्योंकि जमाना बदल गया। हजरत ने अपनी हयात मुबारका में कितने मुरीद उनके ऐसे थे कि जो बिल्कुल गरीब थे, आप खामोशी के साथ उनके बच्चों की ईद का इंतजाम कर दिया करते थे, कभी उनके घर में राशन डलवा दिया करते थे, कभी उनकी शादी हुई तो खामोशी के साथ उनकी पूरी शादी का इंतजाम कर दिया करते। ये सिलसिला जब से चल रहा, लेकिन खैर अब वक्त बदल गया। हमने बाकायदा समनानी इंटरनेशनल वेलफेयर के नाम से ये इदारा कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसमें ताबुन कर रहे हैं, और आप हजरात से भी इल्तिमास है कि आप इसमें ताबुन करें। इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं, राशन हर महीने पहुँचाना जो गरीबों को, वो भी सिलसिला है, और बच्चियों की शादी का भी सिलसिला है, दीगर सिलसिले जो हैं वो इसमें जारी हैं, और आगे भी हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला दीगर काम जो हैं इसमें करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि दरगाह अली अशरफिया की तामीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये दरमियान में आपको ये प्लॉट पूरा आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस सिलसिले में भी अब इसका बाकायदा नक्शा तैयार हो रहा है, उसका एक मॉडल तैयार होगा, और ये इमारत यहाँ से चलेगी और एल शेप में आकर मस्जिद से मिल जाएगी। ये आगे की सारी इमारत तोड़ दी जाएंगी, पीछे के जो मकानात हैं उनसे बात हो रही है, इंशाल्लाह वो खरीदे जाएंगे, ये इमारत पीछे हो जाएगी, ये स्टेज पीछे हो जाएगा, और ये सारा मैदान मिल जाएगा, क्योंकि अब रश काफ़ी, आप देख रहे हैं ना, महफिल खाना भरा है, मस्जिद भरी है, मकबरे में अंदर लोग हैं, ऊपर हैं, इधर हैं, सब जगह ये सारा सिलसिला जो है ये चल रहा है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखें, जिससे जो भी दामे दिरहमे सुखने कदमे जो भी जिस तरह से भी जो हिस्सा लेना चाहें, इसकी दरगाह शरीफ की तामीर में हिस्सा लें। इसमें हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, तबर्रुकात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, जो बहुत से तबर्रुकात जिनकी अभी ज्यारत नहीं कराई गई, चंद जो हैं वो हम यहाँ रखते हैं, और उसके मौके पर लोग ज्यारत करते हैं, फिर उन्हें उठाकर रख देते हैं। लेकिन जब ये इमारत बन जाएगी तो तबर्रुकात के लिए अलहदा एक कमरा बनाया जाएगा, जिसमें पूरे कमरे में तबर्रुकात होंगे, आप एक तरफ से दाखिल हों, तबर्रुकात की ज्यारत करें, दूसरी तरफ से निकल जाए। लाइब्रेरी शानदार मौजूद है, उसके लिए भी यहाँ पर इमारत बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने जहन में रखें, ये हजरत अशरफुल मशाई का फैदान है जो जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इज्तिमाई कुर्बानी जो दरगाह अली अशरफिया की तरफ से हर साल होती है, इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो हो रही है, और उसका बैनर भी वहाँ पर लगा हुआ है, यकीनन आपने देख लिया होगा। तो मैंने तो दूर से देखा, मुझे सिर्फ गाय नज़र आई और कुछ नज़र नहीं आया, इतना लंबा बैनर इन्होंने बना दिया कि खैर बहरहाल वो अंधा भी देखे तो उसे नज़र आ जाए। तो उसी पर हिस्सा भी लिखा हुआ है, जिसको चाहे वो हमारे कदीर अशरफी साहब रोज़ाना यहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ पर आप वो हिस्सा लिखवा दें और इंशाल्लाह उसमें आप हिस्सा लेंगे। और जिस तरह हर साल तरीके के साथ उसकी तकसीम की जाती है, हमारे मरकजी हलका अशरफिया के ये तमाम कारकुरान, हलका अशरफिया न्यू कराची, हलका अशरफिया गुलबहार, पीर कॉलोनी, औरंगी टाउन, कोरंगी, और जितने भी हैं, ये सब बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ उसमें हिस्सा लेते हैं, खुसूसन न्यू कराची वाले, और उसके बाद वो तरीके से वो तकसीम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की, इसको अपने जहन में रखें। आखिरी बात जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ वो यही है, हजरत अशरफुल मशाइख का पैगाम यही है कि शरीयत पर इस्तेकामत के साथ अमल हो, कोई नमाज आपकी कज़ा ना हो, हर नमाज आप वक्त पर अदा करें, इसके अलावा जो वज़ाइफ आपको बताए गए हैं वो पाबंदी से अदा करें, और तीसरी चीज़ दरगाह शरीफ की हाजिरी, इसको मुकद्दर रखें। जब आप नज़रों में रहेंगे तो इंशाअल्लाह काम हो जाए। नज़रों में रहना बड़ी बात है, हम उनको नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख रहे हैं, तो अगर उनकी नज़र इधर पड़ गई तो ये दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हजरत अशरफुल मशाइख, हजरत कुतुब रब्बानी, हजरत मखदूम समनानी, इन सब के फैजान को जारी और सारी रखे, और हम सबको उनके सदक़े में नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए।